फिर उसके बाद देखिए नफिल नमाजों में तहय्यतुल मस्जिद है, ऐसी दो चार जुमले लिख लें इनके लिए भी कि जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो दो रकतें पढ़ें। आपको बताइए दो रकतें किसका शार था, सुन लीजिए, बिलाल का। आपने फरमाया मुझे अपना सबसे ज़्यादा उम्मीद वाला नेक काम बताओ जिसे तुमने इस्लाम लाने के बाद किया है, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है। बिलाल से आपने पूछा, कहा अल्लाह के नबी बस दिन रात में जब कभी वुजू करता हूँ ना तो मैं दो नफिल पढ़ लेता हूँ, और जितनी मेरी तकदीर लिखी गई थी, यानी वजू से नफिल पढ़ता रहता हूँ जितनी मेरी तकदीर लिखी गई, यानी जितने पढ़ सकता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है 1149। तो वुजू करें तो दो नफिल पढ़ लें, क्या कहते हैं इसको, तहय्यतिल वुजू। अच्छा आज ये सुन्नत भी जा रही है, कोशिश करें बावजू घर से निकलें, घर से जब निकलें वुजू करें और मुमकिन हो तो दो नफिल पढ़ लें, और उसके बाद फिर नमाज़े इस्तखारा। इसको तो आपने ज़रूर ही पढ़ना है और ज़रूर इस पर कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला, खैर तलब करना। देखिए इस्तखारा गैब मालूम करना नहीं है, राज फाश होना नहीं है। किसी ने कहा ना 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 मैं नहीं इस्तखारा करती, अंदर से पता नहीं क्या हुक्म निकल आएगा। यानी बहुत लोग सोचते हैं कि इस्तखारा करके हम फंस जाएंगे, वो मामलात जिनमें फैसला करना दुश्वार हो, दो रकत पढ़कर मखसूस दुआ, एक एक लफ्ज़ जो है ना आपका, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इंशाल्लाह इसको याद भी करना है, क्योंकि हर वक्त ही तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप इसको शुरू करेंगे तो आपको फिर लगेगा कि आपको याद भी हो गई है, जिनको आती है वो करते होंगे, कर करके याद हो जाती है। और तर्जमे पे गौर कीजिएगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और ये दुआ हमें मिलती है हज़रत जाबिर से, बुखारी 1162 में। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने की तौफीक दे, इस खातिर के शायद कभी किसी ने ना सुनी हो, एक दफ़ा बोल देती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिल्मिका वस्तकदिरुका बिकुदरतिका वसअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। ए अल्लाह मैं भलाई मांगता हूँ या मांगती हूँ, ये जो इस्तखारा है ना ये खैर से है, टू सीक मांगना तलब करना, कि अल्लाह मैं खैर का सवाल करती हूँ तुझसे, तू कुदरत रखने वाला है और मेरे पास कोई कुदरत नहीं है। सोचिए ज़रा, पहले सारी अपनी अकड़ ख़त्म करेंगे फिर ही अल्लाह को कहेंगे ना ये बात। और व तालमु व लालमु, तू जानता है मैं नहीं जानती, गैब में कल के दिन में क्या होने वाला मुझे नहीं पता। वन तालामुलगयूब, तू तो सारी गैब जानता है। अल्लाहुम्मा इन कुंता तालम, ए अल्लाह अगर तू जानता है। देखिए कितनी बेबसी है, आप ज़रा सोचें इस वक्त आप किसी जक्को तक्के में, जिसको कहते हैं डबल माइंडेड है, जब तक ये दुआ ना पड़े दिल सीधा होता ही नहीं है। यकीन करें ये दुआ आपकी करवटों में भी होनी चाहिए। सुबह उठ के दो नफिल पढ़ लें, अल्लाह सारे दिन में जो खैर के बड़े छोटे काम होंगे अपनी ताईद डाल दें। मैं कभी बैठ नहीं सकती पढ़ाने के लिए जब तक मैं इस सहारे की दुआ ना पढ़ लूँ। क्यों, इल्म तो बहुत सारा होगा, पता नहीं कहाँ क्या देना है। हम बेतुक्का इल्म लोगों को दे आते हैं, इल्म बहुत वारों के पास होता है, कब कहाँ कितना देना कहाँ कितना रोकना, ये है खैर तलब करना, कि अल्लाह ज़ुबान ज़्यादा ही ना बोल जाए। और अब बिश रहली तो पढ़ लिया और पता चला अब चुप ही नहीं कर रहे, नहीं, हर जगह हर बात हर मौके पर नहीं कही जा सकती, कई चीज़ें पुट ऑफ भी कर देती हैं। तो बस अपने आप को अल्लाह पर डाल दें। हज़रत इमाम बुखारी के बारे में आता है, हर हदीस जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी बावजू होके लिखी, और उसके लिए दो नफिल पढ़े इस्तखारे के। तो आपके मेरे नफ्स पे शैतान का कितना गलबा हो सकता है। आप अपने पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, इस्तखारे की दुआ पढ़ें पहले, अल्लाह ताला मेरे इस मामले में अपनी तरफ से खैर डाल दे। और तुझे पता है कल पेपर में सवाल कौन सा आना है, मुझे थोड़ा पता है, आप अल्लाह पे डाल दीजिए तो इंशाल्लाह फिर वो इस्तखारे कर कर के आप सारे पेपर मालूम कर लें। सिर्फ मैं आपको फीलिंग्स दे रही हूँ, मत सोचिएगा कि इस तरह ही करने लग जाए, लेकिन ये जो बात है ना कि तू जानता है मैं नहीं जानती, वन तालामुल गुयूब, ये वाकई बंदे को बेइल्म कर देता है कि अल्लाह मेरा इल्म बिल्कुल बेकार है, आपको पता कल क्या होगा। और अल्लाहुम्मा इन कुंता तालम, अल्लाह अगर आप जानते हैं, अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल्ली, ये काम मेरे हक में अच्छा है, खैरुल्ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबत उम्री, तीन चीज़ें हैं, फ़ी दीनी मेरे दीन के मामले में, देखिए सबसे पहले दीन को रखा करें हर मामले में, फिर उसके बाद माश जिंदगी, और फिर आक़िबत उम्री आखिरी अंजाम, मुराद आखरत भी है। तो फ़क़दर हुली, मुझे इस पे कुदरत दे दे, वयस्सिर हुली, और इसको मेरे लिए आसान कर दे, सुम्मा बारिक ली फी, फिर मेरे लिए इसमें बरकत भी दे दे, वइन कुंता तालम, और अगर आप जानते हैं, अन्नहा ज़लमरा, अगर ये काम شر لی برا ہے میرے لیے فی دینی و معاشی و عاقبت عمری، میرے دین میری معاش اور میرے انجام کے اعتبار سے، تو فصرف ہو انی اس کو میرے سے دور کر دے، وصرف نی انہو اور مجھے اس سے دور کر دے۔ یہاں پہ رک جاتے تو ٹھیک تھا، نہیں، اللہ آپ سے چیزوں کو دور نہیں کرے گا بلکہ وقدر لی الخیر، قریب کر دے، قدرت دے دے مجھے اس خیر پہ، ہی سکانا جہاں سے مرضی ہو، تجھے پتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں اچھی نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے، لیکن میرے پاس وہ چیز لے کے آ جو میرے حق میں اچھی ہے، اور سمردنی بھی، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔ اللہ کرے کہ اس قسم کی خود سپردگی کے ساتھ اگر ہم یہ دعائیں مانگیں تو پھر اللہ کی رحمت سے کتنا فائدہ ہوگا۔ کہاں استخارہ کریں، نماز پڑھنے پہ استخارہ کریں گے ہم، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، غلط، یہ لکھ لیجئے، کہاں استخارہ کریں گے اور کہاں نہیں کریں گے، صرف دو معروف نیکیوں میں سے ایک چوز کرنی ہے، پلس مائنس۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ فرض چیزوں میں استخاروں کی ضرورت نہیں، بس فرض حج ہے آپ کے سر پہ، سر آپ سوچتے میں حج کروں کہ نہ کروں۔ اچھا، کئی چیزوں میں لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، تو خلاصے کے طور پہ کر لیجئے، استخارہ وہ بڑے معاملوں میں جس میں دو میں سے ایک چوز کرنی، یس کہوں کہ نو کہوں، اس میں پھر کب تک کریں، جب تک شرح صدر نہ مل جائے۔ امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص استخارہ کرے تو اس کے بعد اس کام کو اپنا لے جس پر اسے شرح صدر نصیب ہو رہا ہو، یا الاذکار 152 پیج ہے انہی کی کتاب ہے اس میں، تو کیا پتہ چلا کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں گڑبڑ ہوگی، بلکہ سچ بتاؤں وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں تو اس پہ اتنا بولتی ہوں، اور میرا بیلیف کا ایک بہت بڑا حصہ استخارے پہ ہے کہ استخارہ کریں۔ میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں، شاید زیادہ فائدہ ہو۔ ایک سسٹر تھی تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹی کی ماں ہے، اب خاندان میں کوئی لڑکا ہے، یہ چاہتی ہے کہ وہ رشتہ مانگ لیں، سوچیے آپ، وہ مانگ نہیں رہے، اب کیا کریں؟ کسی کا بھی ایک کپ سوچئے، جو بھی رشتہ آیا ہوا ہے جو آپ کو نہیں پسند، ہم اس کا تو استخارہ بھی نہیں کر رہے، ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ میں نے کہا آپ جو رشتہ آیا ہوا ہے نا، آپ اس کا استخارہ کریں، آپ کو نہیں پسند تو ہوگا کیا؟ وقت در لی الخیر و حی سکانہ سم مردن بھی، وہ دوسرا رشتہ آپ کے قریب آ جائے گا آپ کی دعا کے نتیجے میں، کہ اللہ اگر میرے حق میں کوئی دوسری چیز بہتر ہے تو وہ لیا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی یہ ایسے معاملے ہیں کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ دوسروں سے کرائیں، نکالیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے دینداروں سے نکلوائیں، واٹس ایپ میسیجز میں استخارے کرائیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ لکھ لیجئے، استخارہ وہ کرے گا جس کا اپنا معاملہ ہے اور جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یعنی رشتہ ہو رہا ہے نا تو وہ بچہ بچی کرے یا ماں باپ کرے، جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ استخارے کا نیند اور خواب سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سوئیں نہ سوئیں اس وقت کریے استخارہ جب آپ کا پورا ذہن مطلب اس چیز میں فوکسڈ ہوگا، اور بار بار کریں، دو بار کریں، تین بار کریں، نہیں، بس ایک دفعہ کر لیجئے، دل مطمئن ہوگا، اگر تھوڑے دن بعد حالات بدل گئے تو دوبارہ کیجئے۔ نمبر ایک، کیا استخارے کو پیشہ بنایا جا سکتا ہے؟ پیسے لے دے کر استخارہ کریں، نہیں کر سکتا۔ استخارے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو اس معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، ابھی بہتر وقت نہیں آیا کہ آپ اس وقت کے اوپر یہ کام کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بات تھی استخارے کی۔ کسی کو بالکل کلیئر خواب آ جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، لیکن کبھی اپنے خوابوں کی تعبیر نہ کریں خود، میں تو اللہ پہ ڈال دوں گی، اللہ آپ جانتے ہیں، انت تعلم و انی لا اعلم۔ آخری دو چیزیں، توبہ کی رکعتیں، گناہ ہو گیا، ایک اور نماز کیا ہے؟ توبہ کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ کوئی گناہ کرے پھر کھڑا ہو، وضو کرے پھر نماز پڑھے پھر مغفرت مانگے، مگر وہ اللہ کی طرف سے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، سورۃ آل عمران 135، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں اور یا اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ تو ہے ہم میں سے کسی کو یہ نفل پڑھنے کی ضرورت؟ سارا دن ہی پڑھتے رہیں تو بھی ہمارے گناہ نہ ختم ہو۔ پھر اسی طرح سفر سے جب واپس آتے تھے اللہ کے نبی تو بھی دو رکعت پڑھتے تھے، یہ بھی روایت ہے، اللہ کے نبی سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے، दो रकत पढ़ते, लोगों से मिलते मिलाते, हाल अहवाल पूछते, फिर घर तशरीफ़ लाते। ये बुखारी की रिवायत है 4418 और मुस्लिम 7016। एक और नमाज होती है सलातुल कुसूफ और खसूफ, नाम सुना जी। सूरज और चांद ग्रहण के वक्त पे जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उसको कुसूफ कहते हैं, ठीक है। दोनों को लग जाता है, पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आपके बेटे का इंतकाल हुआ जिसका नाम इब्राहिम था, तो उसी दिन इत्तफाक से सूरज को ग्रहण लग गया। कुछ लोगों ने कहो हो सूरज भी नबी के गम में शामिल हो गया, तो आपने कहा ग्रहण किसी की मौत और हयात से नहीं लगता, बल्कि जब देखो तो नमाज़ पढ़ा करो और दुआ करो। ये बुखारी 1043 है। ये मसनून अमल है, इसका एहतमाम करना चाहिए। ऐसे वक्त में अल्लाह से डरना चाहिए। कुरान में क्या आता है? वजूमिया शम्सु वल कमर, क़्यामत के झटकों में एक बहुत बड़ा जो रोल है वो सूरज चांद का है। तो सूरज को चांद को जो ग्रहण लगता है उसके वक्त में नमाज़ पढ़ी जाए। कैसे पढ़ी जाएगी? नंबर एक, नमाज कसूफ के लिए लोग मस्जिद में जमा होंगे, अजान और इकामत नहीं होगी, इमाम दो रकत पढ़ाएंगे, एक रकत में दो दो रुकू और दो दो क्याम होते हैं, और किरत रुकू और सजदे तवील होंगे। ये बुखारी की रिवायत है 1052, ठीक है। एक रकत में दो रुकू होंगे, मुस्लिम से भी मिलती है ये रिवायत 2100। दो रुकुओं के दरमियान में क्या कहा जाएगा? फिर किरत की जाएगी। ये मुस्लिम 2112 में है। और क्या किया जा सकता है जब कुसूफ हो यानी सूरज ग्रहण हो? इस्तग़फार, सदका और तकबीर और दुआ। बुखारी 1060। क्या ये बाजमात अदा होगी? जी, सलातुल कुसूफ बाजमात होती है। बुखारी 1052। किरत कैसे होगी? बुलंद आवाज़ में करेंगे इमाम साहब किरत को। बुखारी 1065 और मुस्लिम 2096। क्या इसके बाद कोई खुतबा भी होगा? नहीं होगा। अजान और इकामत होगी? नहीं होगी, ठीक है। और हमारे यहाँ नमाज़े कसूफ और खसूफ के अलावा कुछ और भी क्या है? प्रेग्नेंट औरतें कैंची ना पकड़ें, छुरी ना पकड़ें और ख़ारिश ना करें। कितनी जहालत है! मैं सोचती हूँ दुनिया कहाँ पहुँच गई और अभी हम इन्हीं टोटकों में पड़े हैं। याद रखिए, ऐसी हालत में प्रेग्नेंट औरतों के जिस्म पर हाथ लगे, कुछ भी हो, बच्चे पे इसका कोई असर नहीं आता। ये बेकारियात हैं, ये तवहमात है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। एक और नमाज है सलातुल इस्तिस्का, बारिश मांगने की नमाज। इस्तिस्का कुरान में भी आया ना, वइस्तिस्का मूसा, ठीक है, पानी तलब करना। कहत साली के वक्त दो रकत नमाज के लिए मखसूस तरीके से बारिश तलब करने को सलातुल इस्तिस्का कहते हैं। फतहुल बारी है 179, जिल्द नंबर 3। तरीका क्या है? मसनून, खुले मैदान में जाएंगे, इमाम इन्हें दो रकत पढ़ाएगा, पहली रकत में 7 तकबीरें और दूसरी रकत में 5 तकबीरें। पहली रकत में सूरत आला और दूसरी में सूरत गाशिया की तिलावत होगी। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर खुतबा देंगे, कसरत से इस्तग़फार होगी, उसमें दुआ मांगेंगे और हथेलियों की पुश्त। अब देखिए, अमूमन हम यूँ दुआ करते हैं ना, तो ये पुश्त नीचे चलती है, उसमें ऐसे पुश्त ऊपर, उल्टे हाथों से आसमान की तरफ इशारा करना। ये अबू दाऊद की रिवायत है 1173। यानी असल में आजजी की बात है। और नमाज इस्तिस्का में खुतबा भी दिया जाएगा, तिर्मिजी 552 है। किरत जहरी होगी, ऊंची आवाज़ से यानी होगी। बुखारी 1026। तो बहरहाल कभी ऐसा वक्त अगर आए और अक्सर ही कोई ना कोई ख़बर आ जाए तो फिर होता है, तो पढ़नी चाहिए। एहतमाम कोई ना करे तो आप लोग ख़ुद मिलके जमा करके कहीं भी जगह पे, यानी कोई मस्जिद वगैरह, तो उसमें पढ़ी जाएगी। और नबी सल्लम इतना हाथ उठाते थे यूं कि आपकी ये जो बखले हैं अंडर आर्म्स, उसकी सफ़ेदी नज़र आ जाती थी। यानी आजजी है, इल्हा है। और ये रिवायत बुखारी 1031 है। क्या इसमें अजान और इकामत होगी? नहीं, कोई साबित नहीं। बुखारी 1022। खुतबे में क्या बातें होंगी? अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो और गुनाहों से इस्तग़फार कर लो। और बारिश तलब करने की दुआ है कोई आपके दीन में? इस्लाम ए टू जी में ये दुआ हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अस्क़िना, ए अल्लाह हमें पिला, गैसन मुगैसन मरीयन मरीयन नाफियन गैर दारिन आजिलन गैर आजिलन। अबू दाऊद की रिवायत है 1169, ए अल्लाह हमें बारिश इनायत कर, उर्दू में ही मांग लें, अज हद मुफीद और मददगार, उतनी बारिश हो जो हमें फ़ायदा भी दे और हमारी मददगार हो, बेहतरीन इंजाम वाली जो शादाबी भी लाए, नफावर हो और ज़रर का बायस ना बने, जल्दी आए देर ना करे। ये आपको दुआओं वाले पीरियड में इंशाल्लाह ऐड करवा के तो अगले दिनों में याद करवा देते हैं। आपको यहाँ बारिश की ज़रूरत होती है बाय द वे? चलें तो कभी हो सकता है आप अफ्रीका चले गए, तो फिर तो चाहिए होगी ना, तो ये दुआएं आनी चाहिएंगी। अच्छा, जब लोग वहां से पलटते हैं ना, तो चादरें जैसे ये ऊपर ओढ़ने ना, इसको उल्टा कर लेकर चलते थे, ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, यानी जिस लिहाज से भी आप अपने आप को आजिज कर दें। अच्छा, बारिश होने लग गई, शुरू हुई तो क्या दुआ मांगते हैं, किसी को याद है? अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफियन, बुखारी की रिवायत है 1032, अल्लाह नफा देने वाली बारिश दे। जरा सा सोचिए तो सही आप, ये कैसा दीन है इस्लाम, हर मौके पे दुआ, हर मौके पे नमाज, ये है इस्लाम। आज कौन सा दीन मशहूर है, आप जरा सोचिए तो सही, हल्ला गुल्ला, वजीफे और मेले ठेले, और नाम नहीं लेना चाहती, दिल टूटते हैं लोगों के। आज जो इस्लाम है ये दूसरा इस्लाम है, असल इस्लाम नहीं है। एक आखिरी नमाज जो आपको पूरा पेज दिया गया, आप अगर पलट कर खोल लीजिए, आपके पास जो शीट है आज की, नमाज़े जनाजा, चंद जुमले जिसमें जनाजे की नमाज। और मैं सोच रही थी इसको भी, जब मैं तैयारी करती हूँ ना तो मैं बहुत सोचती हूँ, आदत बहुत है सोचने की, हर बात पे घंटा लगाती हूँ, फिर सोचती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि दुनिया से जा रहा है एक बंदा आखिरी वक्त तक, अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, प्यारे नबी ने क्या कहा, नमाज नमाज नमाज, चलो भाई जितनी पढ़नी थी पढ़ गया, नहीं अब वो पढ़ता हुआ गया है, अब तुम भी उसके लिए पढ़ो। बात समझ रहे हैं, जिंदा इंसान के लिए दुआ है, आप मेरे लिए करते हैं मैं आपके लिए करती हूँ, आप मेरे लिए आफियत मांगते हैं मैं आपके लिए मांगती हूँ, मरने के बाद जो दुआ मांगी जाती है उसको नमाज़े जनाजा कहते हैं। लिख लें, नमाज़े जनाजा की असल, उसकी रूह क्या है, कि एक बंदा दुनिया से चला गया और आप गवाहियां दे रहे हैं कि अल्लाह ये नमाजी था, ए अल्लाह ये सारी जिंदगी मस्जिदों की तरफ भागा, सजदों की तरफ गया, जाए नमाज पे बैठा, आज हम भी ये दुआ करते हैं कि तू इसको माफ कर दे। ये एक रिक्वेस्ट है। फिर एक और इसका नाम रख लीजिए, सिफारिश, नमाज जनाजा इज अ सिफारिश, क्या कि अल्लाह हमारी सिफारिश इस बंदे के हक में कबूल कर। और नोट कीजिएगा कि नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब है, कर्ज वाले का जनाजा पढ़ाने से अल्लाह के नबी ने खुद तो गुरेज किया, लेकिन लोगों से कहा कि आप जरूर पढ़िए। ये बुखारी की रिवायत है 5371। आपको क्या मिलेगा भाई, हम कहते हैं अच्छा वो तो उसको मिल रहा है ना जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हम नाराज़ से हम नहीं पढ़ते नमाज जनाजा, और वो हमारे बाप की नमाज जनाजा में नहीं आए थे हम नहीं जाते। अगर आपको इसका सवाब और अजर पता लग जाए, कभी ऐसे जुमले सोचे भी ना बोलने तो दूर की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज जनाजा पढ़ने का सवाब एक किरात के बराबर है, और दफन तक साथ रहेंगे तो दो किरात के बराबर। अब आपका भी सवाल होगा, किरात क्या होता है? कराता, जबले ओहद के बराबर जो पहाड़ी होती है ना उसको किरात कहते हैं। ये बुखारी की रिवायत है 1325 और मुस्लिम 945। तो आप अपने लिए किसी की नमाज जनाजा पढ़ें, और बिलीव मी जब दिल सख्त हो जाते हैं ना तो लोग कैसे हो जाते हैं, इतनी लंबी नमाज पढ़ा दी इमाम साहब ने, हाँ भाई हमने तो काम पे जाना है, इमाम साहब तो फारिग हैं, ये बातें सुनने को मिलती हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान में एक मैयत गाड़ी होती है, दूर है, ख़ास तौर पे कराची अगर आप रहे ना तो पैराडाइज पॉइंट की तरफ था, आप तो और भी हो गए होंगे कब्रिस्तान, तो घंटा डेढ़ शहर से बाहर जाते हैं लोग दफनाने के लिए, मोस्टली जहाँ भी कोई हो तो उसके लिए मैयत गाड़ियाँ हैं। यकीन करें जाने वालों ने गवाहियां दी कि गाड़ी के अंदर बैठ के लोग बिजनेस डील्स, रिश्ते नाते, और मैं यकीन तो नहीं करती लेकिन यहां तक अब रिक्वेस्ट थी कि बोर होते हैं रास्ते में, कोई एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। और आज हमारे यहाँ भी नमाज जनाजा पे जाना पढ़ना रस्म हो, जो आता है आप भी जाएंगे, जो आपके जनाजे में नहीं आया नहीं आएंगे, याद रखिएगा ये आपके मेरे लिए। क्वेश्चन लिखिए, नमाज जनाजा कहाँ पढ़ी जाए, नंबर एक खुली जगह पर पढ़ें, बुखारी 1245 और मुस्लिम 951, मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है, सही मुस्लिम 973, कब्रों के दरमियान नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती अबू दाऊद 4922, यानी कब्रिस्तान में डेड बॉडी को ले जाएं और वहां नमाज जनाजा पढ़ें, इसकी इजाजत नहीं है। आपके मेरे मुतल्लिक बहुत अहम सवाल, क्या खवातीन भी नमाज जनाजा में शिरकत कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, करनी चाहिए जहां मौका मिले, और ख़ास तौर पे हज और उमरे के दौरान जो फ़ायदा होता है वो क्या है आप खुद जानते हैं, कि हर नमाज के बाद एक आध जनाजा। इस रमज़ान में मौका मिला अल्लाह के हुक्म से जाने का, तो 10 दिन तो रमज़ान के ही थे, फिर बाद में तो मैंने काउंट करके ऐसे याद आया कि इन शायद 12 या 13 दिन थे, शायद एक नमाज या दो जिसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अमूमन हर नमाज के अंदर एक से जायद जनाजों की बात है, तो मैं उस वक्त हिसाब जोड़ रही थी कि अच्छा अगर 10 दिन है तो 10 50 नमाजें, तो 50 नमाजों में से हर नमाज में अगर एक भी जनाजा ले लें तो कितने पड़े 50, और हर एक के कितने के रात, तो 50 के रात एक मुफ्त का अजर मिल गया। और जुल्म की हद देखिए, लोग बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं और जनाजा नहीं पढ़ते, साथ मर्द नहीं पढ़ते, औरतों को तो बेचारियों को पता भी नहीं होगा, तो औरतों को भी पढ़नी चाहिए। क्या नमाज जनाजा से पहले अजान या इकामत होगी? नहीं होगी। जमात के साथ होगी? जमात से होगी। अल्लाह के नबी ने ये करके दिखाया। कम अज़ कम कितने लोगों से नमाज जनाजा हो जाएगी? एक भी है तो भी हो जाएगी, 1,000 भी हो जाएंगे तो भी हो जाएगी। इमाम कहाँ खड़ा होता है? मर्द का जनाजा होगा तो सर के बराबर, और औरत का होगा तो दरमियान में खड़ा होगा। अबू दाऊद की रिवायत है सही 3735। तरीका क्या है? इमाम 4 या 5 तकबीरें कहेगा, सही मुस्लिम 954 और बुखारी 1340। ये तरीका आना चाहिए, इसको भी आप याद करेंगे। पहली तकबीर यानी अल्लाह अकबर के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सही बुखारी 1335। फिर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सही मुस्लिम 963। फिर इमाम साहब दूसरी दफ़ा अल्लाह अकबर कहेंगे तो उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा, नमाज वाला दुरूद। तीसरी अल्लाह अकबर के बाद मैयत के लिए दुआएं, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू व अग़फिर लहू वली, या अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यितना व मय्यितना, बहुत सारी दुआएं हैं। और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा जाएगा, हाकिम 360 और जिल्द 1, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। तो लिहाजा आज किसी की नमाज जनाजा आप इस इरादे और नीयत से पढ़िए कि कल जब आपका वक्त आएगा तो अल्लाह आपके लिए भी भेज देगा। आप कहते हैं कि जिसकी नमाज जनाजा में 40 40 मुवाहिदीन, मुवाहिद कौन होता है? तौहीद पे अल्लाह को एक मानने वाला, अगर 40 नेक लोग अगर उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले तो अल्लाह उस शख्स की बख्शिश कर देता है। तो हमेशा अच्छे लोगों में रहिए। आप देखिए जैसा बंदा होता है उसकी नमाज जनाजा में वैसे ही लोग होंगे। अक्सर टीवी में या खबरों में, अखबारों में छपी भी खबर, फलां आलिम फौत हुए, जनाजे में शहर भर के दुनिया भर के उलमा ने शिरकत की, फिल्म इंडस्ट्री का फलां चला गया और जनाजे में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारों ने शिरकत की, डॉक्टर जाएगा तो डॉक्टर्स मोस्टली आएंगे। हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह दुनिया में भी नेक लोगों में रखे और आखरत में भी नेक लोगों में रखे। और क्या नमाज जनाजा के बाद कोई इज्तमाही दुआ होती है? नहीं होती। अल्लाह के बंदो, नमाज जनाजा खुद एक दुआ है। आज ये भी बड़ी मुश्किलात हो गई हमारी कि हम अपनी मर्जी से करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, मुश्किल है लेकिन, आपकी मोहब्बत में कोई खुदकुशी करे, सुसाइड, तो क्या उसकी नमाज जनाजा करेंगे? होगी होगी, लेकिन आलिम नहीं पढ़ाएगा, कोई आम बंदा पढ़ा दे, वल्लाहु आलम। शरई हद लगती है जिना की, या जो भी आपको तय के दो तीन हैं ऐसी हदूद, किसने कत्ल किया तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी? पढ़ी जाएगी, सही मुस्लिम 1695 उसकी रिवायत है। कोई माले गनीमत में ख्यानत करे फिर मर जाता है उसी में, दलाइल मौजूद हैं, पढ़ लीजिए, तो क्या होगी? होगी। अबू दाऊद 2710। देखिए दीन ने तो कोई पहलू खाली नहीं छोड़ा, ये तो हमारी बेबसी कि हमने सारा अच्छा वक्त दुनिया को दिया और दीन के लिए हम भाग भाग के बस जल्दी जल्दी में आ जाते हैं। दुआ करिए इस वक्त, यकीन करें मैं ये जो आपको करा रही हूँ, मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत बोझल लग रहा होगा, कुछ कुछ सही भी लग रहा है। आप मुझसे पूछे ना तो मुझे लगता है कि दरिया के ऊपर से गुजर रही हूँ, अंदर नहीं जा रही, और इसी के बाद आज आपके सदका जारी होगा। अल्लाह ने दिल में डाला है कि इसी नाम से या इसको बदल कर 1 साल का कोर्स करवाना है। कई लोग कुरान पूरा भी पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और ये उनके लिए होगा इंशाल्लाह जिनको वक्त नहीं मिलता ना आमतौर पे पढ़ने का। हम सबका फ़र्ज़ है मरने से पहले, अपनी दुनिया से जाने से पहले ये सारी चीज़ें समझें। बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह, जब जनाजा सर्विस में हमारा लेक्चर होगा, जब भी होगा अल्लाह ने चाहा, तो उस दिन आपको कब्र के, तदफीन के और कई ऐसी चीज़ें बताऊँगी अल्लाह ने मौका कर दिया कि जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। और इस पे आज अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस टॉपिक को पूरा करूंगी कि दीन ने मुझे आपको कितना खूबसूरत रास्ता दिखाया है। दुनिया का आज कोई मज़हब, कोई दीन इस हद तक सिक्योर्ड नहीं है कि वो लोगों को इतनी डिटेल से बताए। अल्लाह ताला हमारी कमी बेशियों को दूर करे और नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, हर मौके की नमाज नमाज। और क्या बनेगा उन लोगों का, ज़रा सी छोटी सी एक दो जुमलों की बात, फ़र्ज़ नमाजें नहीं पढ़ते और सिर्फ ईद की नमाज के शौक में लड़ते हैं, शहर में झगड़े हो जाते हैं, आधे लोग एक दिन ईद कर रहे हैं आधे दूसरे दिन। क्या है भाई, ईद की नमाज ही है ना। देखिए हमारी तो हर दिन ही ईद है अल्लाह के हुक्म से, अगर हम अल्लाह की रज़ा में है तो। इन साइड इश्यूज़ में, बहसों में पढ़ने की बजाय अपने फ़राइज़ की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद करे।